ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सर्वसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारम् कर्मभूवृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी विरचित ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है, उसका दूसरा अध्याय यहाँ हम देख रहे हैं। उसमें जीव के पांच असाधारण भावों की चर्चा से प्रारंभ होता है, औपशमिक, शायिक, शावशमिक, औदयिक और पारिणामिक। ये जीव के पांच असाधारण भाव है, उसको हमने विविध पद्धति से, बहुत अलग अलग पद्धति से उसकी चर्चा की है। हमने देखा उपशमिक भाव दो है, क्षायिक भाव नौ है, क्षायोपशमिक भाव 18 है, औदयिक भाव 21 है और पारिणामिक भाव 3 है, उसकी भी हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है। यहाँ जो हिंदी पृष्ठ 182 पर हम आए हैं, औपशमिक भाव की महिमा नाम का जो हेडिंग है वहां पर पांच नंबर का, वहां से हम शुरू करते हैं। गुजराती जिसके पास पुस्तक है वो अपना देख लेना, 175। हम आगे बढ़ते हैं। इस औपशमिक भाव हमने देखा था, औपशमिक भाव कौन से हैं? औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है उसके सबसे पहले जो सम्यक दर्शन होता है उसको कहते हैं औपशमिक सम्यक दर्शन। वहां मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ नाम के जो कर्म हैं, उन कर्मों की उपशम रूप अवस्था पाई जाती है। और जीव में यहां जो तत्व श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन होता है, उस सम्यक दर्शन को वहां औपशमिक सम्यक्त्व ऐसा नाम है। वो कैसे कैसे होता है, कर्मों का उपशम कैसे होता है, हमने तो इतने कर्म बांधे थे, कभी इतना पाप किया था, ये सम्यक दर्शन होता कैसे है, ये कर्मों की अवस्था बदलते कैसी है, तो ये सारा हमें प्रश्नों का उकेल होने वाला है। जीव कर्म में कुछ नहीं कर सकता, करता ही नहीं, ना हमें कुछ करना है। जीव के भाव अपने में होते हैं और वहां कर्मों की अवस्था अपने आप उसके अपने कारण से बदलती रहती है। जीव को कौन सा पुरुषार्थ करना है, क्या करने से ये सारी बातें हो जाने वाली है, इसका उत्तर हम देखेंगे। अभी क्रम से उसकी बात आती है, बहुत बार देखा भी है, फिर भी बारंबार जीव को ऐसा लगता है कि हमें पुरुषार्थ कैसा करना ताकि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो, क्योंकि उसने पुरुषार्थ का सही अर्थ समझा नहीं है। उसको क्या करना चाहिए, इस बात की अभी हम यहां बात या उसकी चर्चा भी करेंगे। अभी आगे देखो हम पढ़ते हैं यहां पर, कल हमने तो इसके ऊपर जो औपशमिक भाव की महिमा है उसके ऊपर चार लाइन वहां से पढ़ते हैं। देखो, श्रद्धा गुण के औपशमिक भाव को उपशम सम्यक दर्शन कहा जाता है। औपशमिक कहो या उपशम कहो, एक ही बात है। इस निश्चय सम्यक दर्शन के प्रकट होने पर इसको निश्चय कहा। श्रद्धा गुण की पर्याय उसको श्रद्धा गुण की कहना, यह निश्चय है। अन्य किसी गुण की पर्याय को सम्यक दर्शन कहना, ये व्यवहार है। फिर से क्या कहा, जो श्रद्धा गुण की सम्यक पर्याय है, स्वभाव पर्याय है, पहले कैसी थी, विभाव रूप थी, अतत्व श्रद्धान था, सात तत्वों संबंधी विपरीत श्रद्धान था, उसकी भूल चल रही थी। तत्व के अभ्यास से तत्व निर्णय पूर्वक उसकी सात तत्वों संबंधी भूल निकल गई, उसको तत्व श्रद्धान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। तो ये जो श्रद्धा गुण की पर्याय है उसको सम्यक दर्शन कहना वो निश्चय है। और अभी जब सम्यक दर्शन होता है तो उस जीव के पर्याय में सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति जो श्रद्धा रूप राग भाव है, उनके प्रति विनय भाव है, सात तत्वों की वहां जो ज्ञान प्रतीति श्रद्धान चलता है वो ज्ञान रूप भाव है, और ये राग भाव है वो चारित्र गुण की पर्याय है। चारित्र गुण की और ज्ञान गुण की पर्याय को सम्यक दर्शन कह देना ये व्यवहार होता है। इसलिए व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। ये व्यवहार सम्यक दर्शन सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति का राग भाव है। राग को सम्यक दर्शन कह देना ये व्यवहार होता है, इसलिए उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। अनेक लोग मानते हैं कि व्यवहार करते करते निश्चय प्रकट हो जाएगा, राग करते करते वीतरागता हो जाएगी, तो ये बात सत्य नहीं है। निश्चय और व्यवहार, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन एक ही समय में प्रकट होता है, और वो ध्यान की अवस्था में प्राप्त होता है। द्रव्य संग्रह में आया है, ये बात आई है कि दुविहम पि मोक्ष मागो ध्याने पाउनदी मुनि नियदा, यानी ये दोनों ही प्रकार का मोक्ष मार्ग ध्यान अवस्था में मुनियों को प्राप्त होता है। क्या हमको नहीं प्राप्त होता? तो हाँ, चौथे गुणस्थान वाले के भी मुनि की अपेक्षा से कथन तो है। चौथे वाले को भी सम्यक दर्शन होता है, आत्मा के ध्यान अवस्था में ही प्राप्त होगा। तो अभी अभी आप कहते फिर ध्यान का निषेध क्यों करते हो? ध्यान का कोई निषेध नहीं करता है, परंतु तत्व निर्णय के बिना वाला जो ध्यान का प्रयास चलता है और लोग यहां से वहां दौड़ा दौड़ी करते हैं और बहुत क्योंकि आकुलित हुए हैं कि हमें इस भव में सम्यक दर्शन तो प्राप्त करना है, परंतु हम क्या करें, कुछ न कुछ करें, तो ये कुछ न कुछ करने को पुरुषार्थ मानते हैं और उनकी ये भ्रमणा चलती रहती है। उसके बारे में अभी हम यहां आगे देखेंगे। देखो, निश्चय सम्यक दर्शन के प्रकट होने पर जीव के धर्म का प्रारंभ होता है। हमने धर्म वितरागता को कहा है। सम्यक दर्शन होते ही एक ही समय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों ही प्रकट होते हैं। कल हमने यहां चारित्र गुण की विभाव और स्वभाव पर्यायों के बारे में कल बात आई थी ना, कि जो अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है तो वहां स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होता है, वितरागता की आंशिक शुरुआत हो जाती है, और तभी हम कहेंगे यहां धर्म की शुरुआत होती है। तब तक धर्म की शुरुआत नहीं होती, भले उसके पहले अन्याय अनीति अधोक्ष का त्याग होता है, अष्टमूल गुण का पालन होता है, सच्चे देवगुरु शास्त्र संबंधी श्रद्धा प्रतीति चलती रहती है, सात तत्वों संबंधी अभ्यास चलता रहता है, परंतु जब तक सम्यक दर्शन आत्मानुभूति नहीं होती है तब तक उस सब को सम्यक दर्शन नहीं कहने में आता, न व्यवहार कहने में आता है। दोनों ही एक समय में ही कहलाएंगे। जब निश्चय है तभी उसके साथ वाला जो है उस पर उपचार से सम्यक दर्शन का आरोप करने में आता है। तो तब धर्म का प्रारंभ होता है। तब जीव के अनादि काल से चली आने वाली श्रद्धा गुण की मिथ्या दशा दूर होकर सम्यक दशा प्रकट होती है। ज्ञान ने तो पहले में पहले जाना था और ज्ञान ने सब कुछ दिखाया। क्या दिखाया? ये आत्मा है, ये परद्रव्य है, आत्मा की ये पर्याय है, ये आत्मा का पारिणामिक भाव है और ये पर्याय भाव है। ज्ञान ने तो सब कुछ दिखा दिया, परंतु श्रद्धा ने जब तक एक्सेप्ट नहीं किया, उसने मैंपना किसमें स्थापित किया था श्रद्धा ने? हाँ, तो पहले में पहले मैं स्वयं जीव और अनेक ये पुद्गल परमाणु मिलकर मैं हूं ऐसा माना था, मान्यता थी ना उसको, मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मुझे स्त्री है और मोक्ष नहीं, आप कहते हमको मोक्ष में अलाउ नहीं कहते, ये इसके लिए गुस्सा भी आता है। तो ये हमने अपने आप को मैं प्लस और अन्य चीजों को मान रखा था, फिर और कैसा माना, मैं जीव तत्व और आश्र तत्व मिलकर मैं हूं ऐसा मान लिया, यानी ये अनादि से इसकी भूले चली आ रही थी। अब कहते हैं ये जो श्रद्धा गुण की मिथ्या दशा थी, अवस्था थी, पर्याय थी, वह दूर होकर सम्यक दशा यानी सम्यक अवस्था, सम्यक पर्याय, स्वभाव पर्याय चालू होती है। यह औषमिक भाव से मिथ्यात्वादि के संवर होते हैं। मिथ्यात्व का संवर होना का अर्थ क्या है सरलाबेन, आप जानती हो? संवर किसको कहते हैं? हाँ, आश्रो का निरोध। देखो, हम आत्मा की पर्याय की बात करेंगे तो यहां आत्मा में शुद्धि की उत्पत्ति होना उसको हम संवर कहते हैं। संवर भी दो प्रकार से कथन करने में आता है, एक तो भाव संवर जो आत्मा में होता है और एक द्रव्य संवर जो कर्मों की अपेक्षा हम बात करते हैं, कि पहले तो मिथ्यात्व दशा में कर्मों का आश्रय और बंध होता था, अब उसमें कुछ पूरा तो बंध रुक नहीं जाता है। पूरा ही बंध रुक जाए तो एकदम 14वें गुणस्थान की अवस्था आ जाएगी, परंतु ऐसा नहीं होता, ये क्रम से हो जाता है। अनेक कर्मों का आश्रय रुक जाता है, जितने प्रमाण में रुका है उतना संवर, सभी कर्मों का संवर एक साथ एकदम नहीं प्रकट होता। तो मिथ्यात्व दशा में मिथ्यात्व का बंध होता था, मिथ्यात्व का आश्रय और बंध होता था, अनंतानुबंधी का आश्रय बंध होता था। जब जीव चौथे गुणस्थान में जाता है तो ना मिथ्यात्व का आश्रय होता है बंध होता है, और ना ही अनंतानुबंधी का आश्रय बंध होता है, वो रुक गया है, तो उसको कहेंगे मिथ्यात्व अनंतानुबंधी संबंधी संवर हो गया। उन प्रकृतियों का यहां आश्रय बंध होता ही नहीं है। इतना ही नहीं, मिथ्यात्व संबंधी जो 16 है अन्य प्रकृतियां, और जो अनंतानुबंधी संबंधी जो 25 है, उनका भी संवर हो जाता है। मालूम है किसी को? आपने सुना होगा ना, पंचलब्धि पुस्तक में लिखा है ना लास्ट में, तो कौन कौन से? वो तो मिथ्यात्व, उंडक संस्थान, नपुसक वेद, असंप्राप्ता सुरुपाटिका सहनन, एकेन्द्रीय स्थावर आतप, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त, बे इंद्रिय तीन इंद्रिय चतुर इंद्रिय, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरकायु, ये मिथ्यात्व के साथ साथ वाली जो प्रकृतियां हैं, ये मात्र पहले गुणस्थान वाले को ही बनती है, ऊपर के किसी भी गुणस्थान में नहीं बनती है। और अनंतानुबंधी के साथ में बंधने वाली अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ स्त्यान वृद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला, फिर नग्रोध परिमंडल स्वाति कुब्जक वामन, फिर वज्र नाराज नाराज अर्ध नाराज और कीलित सहनन, तिरंज गति तिरंज गत्यानुपुरी तिरंजायु और उद्योत, दुर्भग दुस्वर अनादेय स्त्रीवेद नीच गोत्र और अप्रशस्त विहाय गति, ये जो 25 जो है प्रकृतियां जो दूसरे गुणस्थान वाले को अनंतानुबंधी के साथ वाले को बनती है, वे भी चौथे वाले को नहीं बनती। इतनी 41 प्रकृतियों का संवर हो जाता है। ये तो चारों गतियों की अपेक्षा सामान्य कथन है। मनुष्य और तिर्यंच जो है उनके और 6 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, क्योंकि देव वाले देव जो जीव है सम्यक दृष्टि, वह अभी मनुष्य गति आदि बांध रहे हैं, परंतु मनुष्य सम्यक दृष्टि है वो देवगति को बांधेंगे। तो जो मनुष्य सम्यक दृष्टि है उनके और 6 प्रकृतियों का आश्रय बंध रुकता है, वे है वज्रवृषभ नाराज सहनन, औदारिक औदारिक अंगोपांग, मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपुरी और मनुष्यायु, ये 6 कर्म और उनके आश्रय और बंध उसका रुकता है। तो जो मनुष्य सम्यक दृष्टि है उसको 41 + 6 = 47 प्रकृतियों का संवर हो जाता है। देखो कि हाँ बता दिया, हाँ कौन से 6 जो है ना, जो 6 है वो जो मनुष्य है वो देवगति बांधता है ना, तो वो उसके जो वज्र वृषभ नाराज सहनन, औदारिक औदारिक अंगोपांग, मनुष्यगति मनुष्यगत्यानुपूर्वी और मनुष्यायु, ये प्रकृतियां सम्यक दृष्टि मनुष्य को नहीं बनती। सम्यक दर्शन होने के बाद इन प्रकृतियों का बंध नहीं होता। कल हमने देखा था ना, कोई सम्यक दृष्टि मनुष्य है तो फिर वो सम्यक दर्शन के बाद मनुष्यायु को नहीं बांधता, वो तो नियम से देवायु ही बांधेगा। आपका प्रश्न है वज्र वृषभ नाराज सहनन कभी तो बांधेगा जब मोक्ष में जाना है, तो जो चरम शरीरी जीव है वो वज्र वृषभ नाराज सहनन के साथ जन्मता है। हाँ, अभी जो मनुष्य जीव है वो कोई सहनन बांध, क्योंकि देव गति बांधता है, यहाँ जो नाम कर्म बनते हैं ना उसका पैकेज होता है। जो देव गति बांधते हैं तो नाम कर्म की 28 प्रकृतियां ही बनती है। अब जो देव सम्यक दृष्टि है, नारकी सम्यक दृष्टि है, वो मनुष्य गति बांध रहे हैं, तो मनुष्य गति के साथ वहां सहनन बनता है। सम्यक दृष्टि देव और नारकी है, वो वज्रवृषभ नाराज सहनन को ही बांधेंगे। तो ऐसे है ना, वो जब कोई जीव, समझो अभी ये सम्यक दृष्टि की बात छोड़ो, कोई मिथ्या दृष्टि है, कोई एकेंद्र भी जीव है, वो अन्य कौन कौन सी पर्यायों का बंध करता है? एकेंद्रीय संबंधी बंध कर रहा है तो उसके कौन कौन सी प्रकृति बंधेगी? द्विंद्रिय संबंधी या पंचेंद्रिय संबंधी या देव संबंधी, जब ऐसी बात आती है, एकेंद्रीय जीव देव की देवगति नहीं बांध सकता। एकेंद्रीय में से कोई मरकर देव में नहीं जाता, एकेंद्रीय में से मरकर कोई नरक नहीं जाता, द्विंद्रिय से चतुरिंद्रिय तक कोई मरकर देव या नरक में नहीं जा सकता, क्योंकि वे उनके प्रकृति बनती ही नहीं। वैसे ही कोई भी नारकी मरकर एकेंद्रिय द्विंद्रियादि में नहीं जन्मता, वो संगी पंचेंद्रिय ही होगा, ये नियम है। परंतु देव में से मरकर एकेंद्रिय हो सकता है या संगी पंचेंद्रिय हो सकता है, दो ऑप्शन है। अभी ऐसे बहुत सारे नियम है। तो यह जीव सम्यक्त्व के बाद इतनी प्रकृतियां नहीं बांधता है, यह उसका संवर हुआ। अब हमने तो बंध की बात की, ऐसे अनेक प्रकृतियों का उदय भी रुक जाता है। तो ये मोक्ष मार्ग हमें कितना जैसे क्लियर हो जाता है कि सम्यक तो होने के बाद इतनी प्रकृतियां बंधेगी नहीं, और जो पूर्व में बंधी हुई उसका क्या होगा, उसका तो उदय आ सकता है कि नहीं सकता। तो कहते समय दर्शन के बाद मिथ्यात्व का उदय नहीं आएगा, तो मिथ्यात्व प्रकृति अंदर पड़ी है उसका क्या होगा, वो सम्यक प्रकृति रूप होकर उदय में आएगी जो सम्यक्त्व में बाधा नहीं डालती, और आगे चलकर वो क्षायिक सम्यक दृष्टि होगा, सत्ता में से निकल जाएगी। तो पहली बांधी है, अभी हमें क्या करना, हम तो इतने पापी थे, ये हमने एकेंद्रीय संबंधी बांधी होगी, नरगति संबंधी बांधी होगी, तो हम तो बहुत भयभीत हो जाते हैं। ये चिंता की कोई बात नहीं है। जब तत्व विचार शुरू होता है, कितनी ही जो प्रकृतियां पहले बांधी है, जो अप्रशस्त प्रकृति है, पाप प्रकृति है, उसका अनुभाग प्रति समय यानी एक एक समय वो अनंतवाभाग घटता चला जाता है। पूर्व में बंधी हुई पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग अपने आप बढ़ता चला जाता है, यानी संयोगों में अनुकूलता होगी कि नहीं होगी। हम क्या कहते हैं, हम पहले संयोगों को अनुकूल करेंगे और बाद में स्वाध्याय करेंगे। हा? क्यों भाई, ये उल्टा हो रहा है। अरे यहां जो तत्व सुनते हैं, तत्व का निर्णय चलता है, मन ही मन में तत्व का निर्णय होता है, तो कर्मों में भी अभूतपूर्व ऐसी घटनाएं बनती है। जैसे भूचाल आता है वैसे कुछ न कुछ होता है और सारे फेवरेबल कंडीशंस हो जाती है। पाप प्रकृतियों का अनुभाग यानी फल देने की शक्ति घटती चली जाती है, पुण्य कर्मों में फल देने की इंटेंसिटी जो है बहुत बढ़ती चली जाती है, और ये उपशम वगैरह अपने आप होते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता है। जीव में तो बस इतना तत्व विचार करना है, आनंद में रहना है और कुछ नहीं करना है, और ये सारा मोक्ष मार्ग आनंद रूप है। देखो हमने उसको कष्ट रूप माना है। कल प्रश्न आया था ना, ये दीक्षा लेनी पड़ती है क्या, यानी दीक्षा लेने में कुछ बहुत कष्ट है, अरे कपड़े उतारना है, जंगल में जाना है, उष्णता और ये सर्दी गर्मी सहन करना है। सहन करना है जब कहते हैं वहां दुखरूप भाव है, सहन करना में आर्त ध्यान होता है, यहां कोई आर्त ध्यान नहीं है। मुनिराज अपने स्वरूप में लीन है, अतीन्द्रिय आनंद का प्रचुर वेदन कर रहे हैं, अतीन्द्रिय आनंद में मस्त है, और उनके तो बाहर की कोई फिक्र ही नहीं है, ये शरीर रूप में हूं ही नहीं है, ऐसा जब ख्याल में आता है तो उसके प्रति उसका उसको नहलाओ, उसको धुलाओ, उसको श्रृंगार करो उसका, या उसको कपड़े पहनाओ, ऐसे भाव ही उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ये सहज अवस्था है, उसमें कोई खींचातानी नहीं होती, कोई हट नहीं होता है, ये मोक्ष मार्ग का सहज स्वरूप है, सरल है, सुगम है। हमने उसको बहुत कुछ अपनी कल्पना से मान रखा है अलग अलग। तो ये जो है यहां लिखा था ना, औपशमिक भाव से मिथ्यात्वादि के आदि में क्या क्या हमने देखा था ना, इतने सारी प्रकृतियों का संवर हो जाता है, उनका आश्रय और बंध रुक जाता है। यानी कितना वंतर से भी ज्यादा प्रकृतियां, जैसे मिथ्यात्व अवस्था में 117 प्रकृति बंध योग्य होती है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति और आहारक जीव तो मिथ्यात्व अवस्था में बनती नहीं है, उसमें से 117 बंध योग्य है, उसमें से 46 प्रकृति मनुष्य की अभी बंधना बंद हो गया, और उसमें उदय में भी विशिष्ट प्रकृतियों का आना रुक जाता है, भले अंदर पड़े पड़े वो टर्न होकर अदरवाइज उसका फल मिल जाता है। ये हमें जो इतना पाप किया है वो भोगना ही पड़े ऐसा भी नहीं होता हो। हाँ, आपका प्रश्न है, सम्यक दृष्टि जीव मिथ्या दृष्टि होता है तो क्या होता है, इन सभी कर्मों का वापस बंध शुरू हो जाता है। मिथ्यात्व में जाने के बाद जैसे उसके परिणाम है पुण्य रूप या पाप रूप, वैसे वैसे उसके बंध शुरू हो जाते हैं।
तो फिर उसमें सम्यक दर्शन के जब आप बता रहे थे कि पाप करके वो बदल जाते हैं और उपसर्ग के आते हैं, तो फिर सम्यक दृष्टि जब मिथ्या दृष्टि होते उसने पुण्य कर्म के जो बंधे तो क्या उसका भी।
हाँ, आपका प्रश्न है, जब समय दर्शन के पहले क्या होता है, जब प्रायोगिक लब्धि में है ना जीव, यानी तत्व विचार के काल में उसके जितने कर्म हैं अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों के पहले थे, तो उसकी स्थिति सबकी घट गई है, पुण्य की भी और पाप की, और अंतः कोड़ा कोड़ी सागर होती है। कोड़ा कोड़ी सागर से भी लेस देन कोड़ा कोड़ी सागर, उसको कहते हैं अंतः कोड़ा कोड़ी सागर हो जाती है। तो ऐसा जीव मिथ्या तो आने पर क्या होता है, बात क्या हो जाती है, क्योंकि प्राग्ञ लब्धि के बाद करण लब्धि हुई हो, सम्यक दृष्टि हुआ, और फिर बाद में चलकर वो मिथ्या दृष्टि हुआ, तो ये कर्म जो घट गए थे अभी क्या होगा, तो अभी मिथ्यात्व का बंध शुरू हुआ, बराबर है ना। तो जो अंत कोड़ा कोड़ी सागर तक आते हैं, ये जो उसका फिर उत्कर्षण हो जाता है, ये पहले जो स्थिति घट गई थी, वे परमाणु फिर जहां से जितनी घटी थी, जितना पहले बंधा था, उतने ऊपर तक चले जाते हैं। फिर अन्य भी कर्म ऐसा ही होता है। अब ये तीव्र मिथ्यात्व कर रहा है। देखो, हमारे हर समय के परिणाम के कारण नए कर्म तो बनते ही बनते हैं, पुराने जो पाप पुण्य रूप कर्म थे उसमें भी वेरिएशन होता है। हम देखते हैं ना, किसी ने मंदिर बंधा है, उसके अत्यंत शुभ भाव हुए थे, ऐसा लगा कि ये मंदिर बनेगा तो कितना जीवों का कल्याण होगा, जो कुछ उसके परिणाम थे, और बाद में कुछ साल बीत गए, परिणाम बिगड़ गए। अरे मैंने क्या काय को इतना खर्चा किया, वेस्ट किया, उसके बदले में स्टॉक में रखता तो मैं कोई बंगला बांधता तो, महल बना देता तो, ऐसे ऐसे उसके विपरीत भाव भी और अन्य भी कुछ भाव हो सकते हैं, तो उसके कारण पहले बंधा हुआ पुण्य भी पाप रूप से टर्न होता है। ये तो परिणामों के तो कई ऐसे परिणाम तो सोच समझ कर तो होते नहीं, होते ही रहते हैं, तो ये तो पुण्य पाप का खेल ऐसा ही होते रहता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। यस, हाँ प्रश्न है। आप कहते हैं कर्मों की अवस्था, ये कर्मों का जो ये सारा आप कह रहे हैं साइंस, वो इतना हमारे अनुकूल है, सुविधा है, तो जीव क्यों नहीं अनादि से वो क्यों भ्रमण कर रहा है, क्यों उसके पीछे नहीं लगता है? यही है उसके, ये जो मिथ्यात्व है ना, उल्टी मान्यता, उसने कुछ न कुछ अपनी कल्पना से मान लिया है। और सच्चा स्वरूप कोई देखो, मिथ्यात्व जब तीव्र होता है और कोई सच्चा भी स्वरूप समझाना चाहता है तो उसको उसके प्रति तीव्र अरुचि हो जाती है, गुस्सा भी करता है, ये आत्मा की बात हमको नहीं सुनाना, ऐसा भी कहते हैं ना। अभी बात आई थी ना, वो मरण के समय में क्या करना, तो मैं क्या मरने वाला हूं क्या, ऐसे बातें सुना रहे, ऐसा भी गुस्सा करेगा। तो ये जीव के जो अभी कभी कभी क्या होता है, उसके परिणाम कोमल होते हैं, कोई सुनाना चाहता है तो सुनता भी है, उतने तो उसके मंद परिणाम है, परंतु सुनने पर वो समझना, उस पर बार बार चिंतन करना, उसका मनन करना, ये बात रह जाती है, और फिर भी ये भ्रमणा चल रही थी अभिप्राय में, अभी कचास है ना, अभिप्राय में कुछ अलग धारणा रख दी उसने, मान लिया है तो ये ध्यान से मुझे प्राप्त होगा, कोई गुरु मुझे दे देगा तो मैं इसकी भक्ति करूंगा तो मुझे जल्दी सम्यक दर्शन होगा, ऐसी कोई ना कोई उसको बाहर की ओर ही उसकी अधिकता रहती है, क्या करे, ऐसा ही है। तो जो कुछ हो रहा है वो जीव की अपनी योग्यता से हो रहा है, हम तो बाहर देखते ऐसा क्यों, इन्हें क्या निमित्त तो उसको मिला इसलिए हो रहा, ख्याल आए ना, क्योंकि उसने तत्वों का निर्णय अभी सही नहीं किया हुआ। ये तत्वों का निर्णय करने के लिए कोई भी प्रकरण लो, भावों के प्रकरण हो या पांच समवायों का हो, निमित्त उपादान का हो, क्रमबद्ध पर्याय का हो, निश्चय व्यवहार का हो, सात तत्व का हो, तो उसमें तो हमें अपना स्वरूप कैसे पहचानना, और हमारी भूल हो यदि अभिप्राय में, तो सच्चा ज्ञान होता है तो भूल अपने आप सुधर जाती है। तो हमें तो सरल मन से, सरल पद्धति से इसको ग्रहण करना चाहिए। हम सुनते बैठते हैं तो हमारी पहले के अभिप्राय कायम रखकर सुनना चाहते हैं, और अब शास्त्र पढ़ते तो अपने अभिप्राय के अनुसार उसका अर्थ लगाना चाहते हैं, तो ये भूल रह जाती है हमारी, ख्याल में ना। कभी कभी ज्यादा शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है परंतु सरल मन वाला है तो उसको शास्त्र का मर्म ख्याल में आता है, मर्म ख्याल में आना ये बात है, बहुत सारे शास्त्र याद हो गए इसलिए उसको सम्यक दर्शन होता है, ये बात बिल्कुल नहीं है। क्योंकि तिर्यंचों को भी सम्यक दर्शन होता है तो उसका जो कुछ मर्म है वो उन्होंने समझ लिया है, ख्याल में आता। तो इसका अर्थ समझ में आए ना, औपशमिक भाव से मिथ्यात्वादी के संवर होते। अब औपशमिक भाव की महिमा, इस औपशमिक भाव अर्थात सम्यक दर्शन की ऐसी महिमा है कि जो जीव पुरुषार्थ के द्वारा, किसके द्वारा, गुरु देता है ना उसको सम्यक दर्शन, जीव स्वयं अपने पुरुषार्थ के द्वारा, ये पुरुषार्थ तो आप कहेंगे सभी पर्याय में होता है, मिथ्या तो भी आप कहते हैं पुरुषार्थ से होता है, हाँ परंतु वो मोक्ष के लिए वो उल्टा पुरुषार्थ है। सही पुरुषार्थ के द्वारा, जिस पुरुषार्थ के, क्योंकि हम कहते हैं ना पुरुषार्थ पुरुषार्थ क्या है, तो ये मोक्ष के पुरुषार्थ की बात है, तो क्योंकि हम अर्थ उपार्जन करना वो भी अपने पुरुषार्थ से कमाया, धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसे चार पुरुषार्थ बताए हैं, तो वो को उसको भी पुरुषार्थ मान लेते हैं, उसकी बात यहां नहीं है, ये तो मोक्ष पुरुषार्थ की बात है। तो जीव पुरुषार्थ के द्वारा उसे एक बार प्रकट कर लेता है, उसे अपनी पूर्ण पवित्र दशा प्रकट हुए बिना नहीं रह सकती। क्या कहा, एक बार समय दर्शन प्रकट हुआ तो अभी उसके संसार का किनारा निकट आ गया है, हो सकता है उसी भव में मोक्ष चला जाए, हो सकता है कुछ थोड़े भव में मोक्ष चला जाए, और अधिक से अधिक कितना काल लगेगा उसको मोक्ष जाने के लिए, अभी अर्ध पुद्गल परावर्तन में नियम से मोक्ष दशा प्रकट होगी ही होगी, अब उससे अधिक काल उसका नहीं है, उसको भी निकट आ गया कहते हो अर्ध पुद्गल परावर्तन, चूंकि वो अनंत काल है, फिर भी प्रथम औपशमिक भाव के प्रकट होने पर अध्याय सूत्र 32 में कथित उन्मत्त दशा दूर हो जाती है। ये उन्मत्त दशा क्या है, बेहोशी है, पागलपन है, कौन से, ये मिथ्यात्व दशा जो है, अतत्व श्रद्धान है। देखो हम लौकिक में कितने होशियार होते हैं, कोई हमको फंसाता है तो हम बिल्कुल चौंकन्ने हैं, परंतु जब देव शास्त्र गुरु की बात आती है तो जो चाहे जैसा उपदेश दे, और जो कोई कहलाए अपने आप को देव या गुरु या शास्त्र जो कुछ कहे वो हमको जी हां करके मान लेते हैं, किसी के पीछे पड़ जाते हैं, ख्याल है ना। अभी हम अन्य भी देखते हैं ना, अभी नदी में स्नान करने से धर्म होगा, मानने वाले कितने लाखों है ना, तो उनकी बुद्धि ऐसी कैसी हो जाती है, पागल जैसे, पत्थर के आगे समुद्र की पूजा करेंगे, नदी की पूजा करेंगे, वृक्ष की पूजा करेंगे, अग्नि की पूजा करेंगे, एकेंद्रियों की पूजा करते हैं। तो हम पंचेंद्रिय और एकेंद्रियों की पूजा करके हमें लाभ हो जावे, ये जो कितनी ऐसी लौकिक मूर्ताएं हैं या साधु संबंधी मूर्ता है, देव संबंधी जो मूर्ता है, देव हमारा कुछ भला करेगा, उसके सामने मन्नत मांगना, कितनी बातें चलती है ना, यात्रा क्यों करते हैं, नहीं जाके हम मन्नत मांगे हमारा भला करेगा, और वो भी महावीर जी गए क्या, आप कभी नहीं गए, गए ना, वहां जाके क्या करते हैं, छत्र चढ़ाऊंगा, क्यों, बच्चा बच्चा चाहिए, हाँ वो पहले कोई छत्र नहीं चढ़ाएगा, बच्चा होगा तो चढ़ाएंगे बाकी सब पहले पैसे देके हमें बुकिंग करना पड़ता है, ट्रेन का हो या प्लेन का हो, वहां तो पहले बुकिंग करते हैं, पहले पैसे देते हैं, इन एडवांस सब कुछ, ओपन हार्ट सर्जरी करवानी होगी पहले बताएंगे इतने 4 लाख भर दो कैश, हाँ चेक का भी कोई भरोसा नहीं, तो हम आगे बढ़ेंगे, परंतु यहाँ भगवान को क्या, मन्नत मांगते समय ये मेरा काम कर दो तो मैं आपको ये अमुक बात दे दूं, जैसे भगवान बैठे हैं आशा लगाकर। ये आपको एक कथा मालूम है कि नहीं मालूम, एक महिला थी, उसको पुत्र चाहिए था, पुत्र नहीं हो रहा था, तो गई अभी सो कॉल्ड भगवान के पास गई और बताया भगवान को, हे भगवान मुझे पुत्र दे दे, तो क्या करूंगी मैं, तुझे सोने की अंगी, ये मराठी में उसको अंगरखा कहते हैं, सोन्याचा अंगरखा देईन मी तुला, यानी क्या, मैं सोने का हाँ अंगरखा अंगी दे दूंगी, तो देव भी खुश हो गया कह रहे अपने को अभी सोने के कपड़े कुछ मिल जाएंगे, तो फिर कालांतर से उस महिला को पुत्र हो गया, तो पुत्र हो गया, वो जाती थी भगवान के पास, तो अभी देखता था, अरे आज आएगी कल आएगी, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अरे तो देने वाली थी ना, हाँ ठहर ना मैं देने वाली हूँ, तो 9-10 महीने हो गए, बच्चा बड़ा हो गया, साल भर में तो कितना बड़ा हो जाता है ना, तो एक दिन आ गई, और एक ऐसा फटा पुराना ऐसा कोई जो बच्चे के होते ना छोटे बच्चे के कपड़े, ऐसा एक कपड़ा लेके भगवान के पास आ गई और बोली ये देखो ये है सोन्या सा अंगरखा, क्योंकि उसके अपने लड़के का नाम उसने सोन्या रखा था तो ये शून्य सा शर्त है कहती है। तो ये ऐसे है कि क्या हम भी भगवान को जो वादा करते हैं कि मैं ये मेरा काम होगा तो मैं छत्र चढ़ाऊंगा, किसके पास पुत्र मांगते हैं? महावीर भगवान को, जो बाल ब्रह्मचारी थे और ये सब कुछ छोड़कर चले जाए गए थे। हमारे पास एक स्वाध्याय में आते थे, उन्होंने बोला क्या हर्जा है, हम पारसनाथ को मांगेंगे, महावीर को कैसे भी मांगेंगे, हमको बच्चा हुआ तो उसमें क्या है हर्जा, वे तो वीतरागी भगवान है। उन्होंने बोला चलो वो बच्चा मिलेगा, परंतु एक कंडीशन है, जैसे वे संसार का त्याग करके गए थे, निकल गए थे, वैसे तुम्हारा बच्चा भी जाएगा, चलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, तो फिर हमको नहीं चाहिए बच्चा। ये सचमुच ऐसी घटना घटी थी। ऐसे है लोगों की जो दशा है, आपने कहा ना क्यों अनादि से ये उन्मत्त दशा हो रही है उसकी, वो स्वयं क्या कर रहा है, वो बिना सोचे समझे कुछ भी करता है और मान लेता है कि मैं कुछ धर्म कर रहा हूं, मैं कुछ आगे बढ़ रहा हूं, तो ये उन्मत्त दशा उसकी दूर हो जाती है कब? औपशमिक भाव प्रकट होने पर, अर्थात जीव की मिथ्या ज्ञान दशा दूर होकर वह सम्यक मतिश्रुत ज्ञान रूप हो जाती है। पहले कैसी थी ज्ञान दशा? मिथ्या ज्ञान था, अभी वो सम्यक ज्ञान हो गया। खोटा ज्ञान था, विपरीत ज्ञान था, अभी वो ज्ञान उसका सही हो गया, सही जानने लगा वो। और यदि उस जीव को पहले मिथ्या अवधि ज्ञान हो, देखो मिथ्या तो दशा में भी जीवों को अवधि ज्ञान हो सकता है, मनुष्यों की तो क्या बात, तिर्यंचों को भी हो सकता है, और जो देव मिथ्या दृष्टि है, नारकी मिथ्या दृष्टि है, उनके भी जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, उस भव में नियम से अवधि ज्ञान होता ही होता है। मिथ्या दृष्टियों के अवधि ज्ञान को हम कु अवधि कहेंगे या विभंग ज्ञान कहते हैं, और सम्यक दृष्टियों को भी वहां अवधि ज्ञान रहता है, उसको हम सु अवधि या अवधि ज्ञान कहेंगे। तो देव और नारकी सभी जीवों को अवधि ज्ञान वहां पाया ही जाता है, जैसे उनके वैकृत शरीर पाया ही जाता है, वैसे वहां पर अवधि ज्ञान होता ही है। परंतु कोई जो ये मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि हुआ, तो उसके पहले तो कु अवधि ज्ञान था, अभी वो कैसे हो जाता है? सु अवधि ज्ञान हो जाता है। हाँ, मनुष्यों में भी अवधि ज्ञान सम्यक दर्शन के बिना होता है, जिसको कु अवधि ज्ञान कहते हैं। अपना यहाँ था ना वो नॉस्टरडेम, उसके वॉल्यूम है ना, पढ़े ना? हाँ, उसने तो कितनी आगाही की थी, ये 9/11 सब उसने बताया था उसमें, उसका अर्थ तक भी बराबर नहीं मालूम था, मैन मेड माउंटेन को ऐसे गिरा देंगे, ऐसी बातें आई थी उसमें, महीने तक के उसने उसमें लिखा था, ईयर तक लिखा था।
फ्लाइंग बर्ड्स विल कम,
ये तो को अवधि ज्ञान हो सकता है मनुष्यों में, बहुत सारे पाए जाते हैं अन्य, इसी को तो लोग चमत्कार मानते हैं और उनके पीछे लगते हैं, कुछ थोड़ी बहुत बातें उनको पता है, बता भी देते हैं, और फिर ऐसा लगता है ये त्रिकालज्ञ है, त्रिकाल ज्ञानी है, फिर वो उसके पीछे लगे रहते हैं और फिर अपने मिथ्यात्व का पोषण और करते रहते हैं। यही तो कुगुरी कहलाएंगे ना, ये कुछ बातें सच होती है तो फिर वो जो चाहे वो जैसा बताएं वैसा करेंगे, ये करो, ये जाके ये व्यंतरों को इतना चढ़ा दो, ऐसा अन्न दे दो, ये जो कुछ बताएगा वो करते रहेंगे, और ये मिथ्यात्व का, गृहित मिथ्यात्व का पोषण होगा। ये इसको विभंग ज्ञान कहते हैं, को अवधि तिर्यंचों को भी होता है, मनुष्यों की तो क्या बात है। देखो सम्यक दर्शन की महिमा बताने के लिए आचार्य देव ने अध्याय 1 के पहले सूत्र में पहला ही शब्द सम्यक दर्शन कहा है। क्या है वो सूत्र, याद है किसी को? हाँ बोलो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, सबको मिलकर, सब अनेक है ना, सम्यक दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र, ये सबका मिलकर मोक्ष मार्ग कितने हैं? तीन है, मोक्ष मार्ग एक वचन लिखा है। कल ये मास्टर साहब सिखा रहे थे ना संस्कृत, हाँ है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी ये अनेक है, परंतु मोक्ष मार्ग सब मिलकर एक मोक्ष मार्ग है, और प्रथम सम्यक दर्शन औपशमिक भाव से ही होता है। सबसे पहले में पहले जब सम्यक दर्शन होता है तो वहां औपशमिक सम्यक दर्शन पाया जाता है, इसलिए औपशमिक भाव की महिमा बताने के लिए यहां भी यह दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हुए वह भाव पहले सूत्र के पहले ही शब्द में बताए। क्या कहते हैं? पहला अध्याय शुरू होता है सम्यक दर्शन शब्द से और दूसरा अध्याय शुरू हुआ है कौन सा? हमें पहला सूत्र कौन सा पढ़ा? औपशमिक क्षायिकौ भावौ, है ना? औपशमिक शब्द से शुरू हुआ है। अब ये पांच भावों के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण। आपका प्रश्न यहां फिर पूछा है बेन, प्रत्येक जीव में अनादिकाल से पारिणामिक भाव है, फिर भी उसे औपशमिक भाव अर्थात सम्यक दर्शन क्यों नहीं प्रकट होता? स्वभाव भाव तो हर एक जीव के पास है, तो सम्यक दर्शन प्रकट होना चाहिए ना। तो आप कहते हैं सम्यक दर्शन उपादान शक्ति से प्रकट होता है, तो क्यों नहीं प्रकट हुआ है? आप कहते हैं पारिणामिक भाव के लक्ष्य से होता है, तो क्यों नहीं प्रकट हो रहा? प्रश्न तो यही है। अब उसका उत्तर देते हैं। जीव को अनादिकाल से अपने स्वरूप की प्रतीति नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं कहा। मैं हूं ऐसी प्रतीति है नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा। क्या कहा? प्रत्येक जीव को मैं हूं ऐसा एहसास अनादि से है। किसी को पूछा आप हाजिर हो? मैं उपस्थित हूं। यस सर, आई एम हियर। परंतु हूं एम आई, इसके बारे में भ्रमणा चल रही है। मैं हूं यह बात एकेंद्रीय भी जानते हैं। ये 17वीं 18वीं गाथा में कुनकुंदाचार्य ने कहा ना समय सार में कि आबाल गोपाल सबको यह अनुभव में आ रहा है, आत्मा अनुभव में आना। इसका अर्थ क्या है? मैं हूं यह बात सबके प्रतीति में, सबके जानने में आ रही है। तो आप कहते आत्मा जानने में आ रहा है और यहां कहते आत्मा का अनुभव करो, ये कैसे दो बातें हो रही है? मैं हूं ये बात तो ख्याल में आ रही है, परंतु मैं हूं तो यहां देखा तो क्या हुआ? शरीर दिखा। तो किसको मैं मान लिया इस जीव ने? ये शरीर ही मैं हूं मान लिया। तो शास्त्र में सुना शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूं, तो कैसा मान लिया? ये रागी द्वेषी है ना, ये मैं हूं। ख्याल में? पहले तो अनेक भ्रमणा थी, शरीर और मैं मिलकर मैं हूं। अब कहते ये राग वाला मैं हूं, अरे ये अल्प बुद्धि वाला मैं हूं, ऐसे उसने भ्रमणा कर ली अपने स्वरूप के बारे में। तो कहते हैं अनादिकाल से अपने स्वरूप की प्रतीति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इसलिए वह यह नहीं जानता है कि मैं स्वयं पारिणामिक भाव स्वरूप हूं। क्या कहते हैं? ये मैं जो है वो किसमें स्थापित करना है? इस जीव ने किसमें स्थापित किया है? या तो परद्रव्य में मैंपना स्थापित किया था जो शरीर मैं हूं मानता था, या पर्याय जितना अपने को माना तो पर्याय में मैंपना स्थापित किया। कल छड़ारा में बात आई ना, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, ये पर्याय। या मैं अल्प मैं बुद्धिहीन मैं मूर्ख मैं प्रवीण मैं पंडित हूं मैं डॉक्टर हूं, जितना अभी पढ़ा है उतना अपना रूप मानता है। अपना जो पारिणामिक भाव है उस रूप मैं हूं, इस बात को इस जीव ने अनादि से स्वीकार ही नहीं किया है। अब सम्यक दर्शन होने पर मैं सम्यक दृष्टि हूं, इतना पर्याय रूप ही अपने को मानेगा कि नहीं मानेगा? हाँ, वो मानने लगेगा तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। उतना ही मैं हूं ये नहीं है, जानेगा पर्याय में क्या है ये जाना जाता है, परंतु क्या मैं उतना ही हूं? क्या सम्यक दृष्टि नहीं जानता है कि पर्याय में राग द्वेष है, परंतु वो अपने को राग द्वेष इतना ही नहीं मान रहा? पर्याय जितना ही मेरा स्वभाव ऐसा नहीं, क्योंकि उसने मैंपना किसमें स्थापित किया है? त्रिकाल एक रूप रहने वाला जो परम पारिणामिक भाव है उस रूप मैं हूं यह उसने स्वीकार किया है। तो कहते हैं कि वह यह नहीं जानता है कि मैं स्वयं पारिणामिक भाव स्वरूप हूं, और वह अज्ञान दशा में यह मानता रहता है। अभी क्या क्या भूल हो रही है? अनादि से क्या भूल की उसने कि शरीर मेरा है? कोई कोई तो शरीर ही मैं हूं मानता है, और कोई मानते ये शरीर मेरा है, और शरीर के अनुकूल ज्ञात होने वाली परवस्तुएं मुझे लाभकारी है। ये तो शरीर को क्या क्या अनुकूल लगती है, तो कपड़े अनुकूल लगते हैं, तो गर्म कपड़े स्वेटर वगैरह अनुकूल लगते हैं कि पतले कपड़े अनुकूल लगते हैं, बोलो। हाँ, गर्मी में पतले अनुकूल लगते हैं और सर्दियों में ये कुछ वुलन वगैरह अनुकूल लगते हैं। वो भी अनुकूल, वो कपड़े भी कांस्टेंट नहीं है अनुकूल और प्रतिकूल, वो भी चेंज होते रहते हैं। क्यों? तथा शरीर के प्रतिकूल ज्ञात होने वाली वस्तुएं हानिकारी है, उसमें उसका इष्ट अनिष्टता क्यों हो रही है? मिथ्या बुद्धि के कारण। क्योंकि मैं कौन हूं नहीं पहचाना है, शरीर ही मैं हूं मानता है जो जीव, तो शरीर को अनुकूल ऐसे वस्त्र धारण करने के भी भाव होते हैं। अब मुनिराज जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया है, प्रचुर स्वसंवेदन है, शरीर से भिन्नता उनकी बिल्कुल चारित्र में दृढ़ता है, ऐसे जीवों को वो कपड़े धारण करने के भाव आएंगे कि नहीं आएंगे? वो बाहर झाड़ है ना, उसके पीले पत्ते हो गए, उसको जाके कलर मारने का भाव आता है किसको? नहीं आता। और अपने बालों को कलर करने का भाव अभी आ रहा है, हा? तो वो दूर का है ना, उसको नहीं आता है। ऐसे ये शरीर मैं नहीं हूं, तभी उसको नहलाना है, उसको धोना है, उसको कपड़े पहनाना है, ये चमड़े को, ये हम कैसी मजूरी कर रहे हैं चमड़ा साफ करने की, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो कहते हैं इसलिए इसका झुकाव परवस्तुओं, शरीर और विकारी भावों की ओर बना ही रहता है। किसमें किसमें इसका झुकाव है? परवस्तुओं में झुकाव है। कल बेन ने पूछा था हमें पुद्गल ही क्यों ऐसे, उसकी महिमा क्यों आती, अपनी महिमा क्यों नहीं आती, है ना बेन? ये उत्तर है ना उसका, क्योंकि उसने परवस्तुओं में यानी पुद्गल की चकाचौंध में, अरे कितना अच्छा ये हीरा, कितना बड़ा है, कितना सुंदर है, परंतु मैं कितना सुंदर हूं इसका जानने का निर्णय करने वाला तो मैं स्वयं हूं, और अपने में ऐसे कितने सारे अनंत गुणों का भंडार मैं हूं, उसका कभी उसने विचार ही नहीं किया है, विचार में भी नहीं लिया है। तो परवस्तुओं पर उसका झुकाव है, शरीर की ओर झुकाव है और विकारी भावों की ओर झुकाव है। कौन से विकारी भाव? पुण्य पाप के भाव। अभी हम कहेंगे पाप की ओर झुकाव नहीं है, परंतु पुण्य, पुण्य की मिठास है ना, झुकाव की बात है, पुण्य करने नहीं करने की बात नहीं है, परंतु पुण्य करने से मैं आगे बढ़ूंगा, पुण्य करने से मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, ये मिथ्या भाव उसका है। देखो जो तत्व रुचि करता है, स्वाध्याय करता है, तो उसको तो उच्च क्वालिटी के पुण्य भाव बन रहे हैं, उसका तो बहुत पुण्य बंद हो रहा है। वो नहीं चाहता है कि ये मुझे पुण्य बंद करने के लिए स्वाध्याय नहीं करता है, पुण्य बंद करने के लिए पूजा नहीं करता है। क्या सम्यक दृष्टि जीव पूजा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना, चौथे पांचों गुणस्थान वाला भी पूजा करेगा, परंतु वो उसमें धर्म नहीं मानता, क्योंकि जब अंतरंग में स्थिर नहीं हुआ जाता तो मान लेते अभी सुबह उठकर उसने ध्यान किया, सामायिक किया, जो कुछ आप उसको नाम दे दो, और फिर 24 घंटे क्या करेगा, या दो चार घंटे भी बचे क्या करेगा, वो टीवी ऑन करके बैठ जाएगा ना सामने, अरे उसको उसमें रुचि ही नहीं रहती है, तो क्या करेगा, दूसरा शास्त्र पढ़ेगा, अभी समय सार खुला बैठा है, फिर तो कर्णानुयोग पढ़ेगा, प्रथमानुयोग पढ़ेगा, त्रिलोक सार पढ़ेगा, और क्या करेगा? जो ज्ञान जो सच्चा जिसमें मिलता है उसके उसके ही उसके बुद्धि होगी ना कि मैं इसको भी पढ़ूं, क्योंकि मन तो कुछ न कुछ अवलंबन चाहेगा, तो दुनिया की खबरें लेने बैठ जाएगा न्यूज चैनल लगाकर, परंतु यहां क्या हो रहा है उसकी बात क्या अता पता नहीं उसको, ये बात सहज होती है, ये जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती उसको। ये मुनियों का स्वरूप भी हमारे ख्याल में नहीं आता है, या सम्यक दृष्टियों का भी नहीं आता है, तो ये इसीलिए कि हमें उस स्वरूप की पहचान नहीं है। ख्याल में आया? अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये विकारी भाव की ओर बना ही रहता है। यहां जो किसी से उत्पन्न नहीं किया है और कभी किसी से जिसका विनाश नहीं होता, ऐसे पारिणामिक भाव का ज्ञान कराकर, क्या कहा? किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, किसी ने ये पारिणामिक भाव को उत्पन्न नहीं किया है, क्योंकि स्वभाव जो होता है वो कोई उत्पन्न नहीं करता, तो जीव स्वयं तो उसको उत्पन्न करता होगा कि नहीं, मेरा प्रश्न है। जीव ने स्वयं तो अपने पारिणामिक भाव को उत्पन्न किया है कि नहीं किया है? आप क्या कहते हैं, क्यों नहीं किया, आप कुछ कह सकते हैं? हाँ, है ही, अनादेश ही है, जो नया होता है उसको हम पर्याय कहेंगे। तो ये पर्याय रूप भाव नहीं, ये तो पारिणामिक भाव हमारा स्वभाव भाव है। तो द्रव्य अनादि से है तो उसका पारिणामिक भाव भी अनादि से है। पर्याय का क्रम होता है या पर्याय पलटती रहती है, परंतु स्वभाव भाव तो अनादि अनंत कायम रहता है। सिद्ध होने के बाद भी मिटेगा कि नहीं मिटेगा पारिणामिक भाव? हाँ, नियति बेन आप क्या कहती है, सिद्ध होने के बाद पारिणामिक भाव मिटेगा कि नहीं मिटेगा? हमको निर्णय करना है अपनी बुद्धि के द्वारा, मिटना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य नष्ट हो जाएगा, है ना? हाँ, पारिणामिक भाव हमारा स्वभाव भाव है, ज्ञान गुण है हमारा, दर्शन गुण है, ये सारे जो अनंत गुणों का पिंड जो है वो किसी ने बनाया नहीं है, बराबर है ना? और वो अनादि से ही है ही है। अब उसके आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, उसी के आश्रय से केवल ज्ञान भी प्रकट हुआ। तो केवल ज्ञान प्रकट होने पर वो केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान कितने काल तक रहेगा? अनंत काल। और पारिणामिक भाव मिट जाएगा कि नहीं मिटेगा? देखो हम क्या कहते हैं, पारिणामिक भाव ये स्वभाव भाव है। स्वभाव उसी को कहते जो अनादि अनंत रहता है। पर्याय में विकार हो या शुद्ध पर्याय हो, पारिणामिक भाव तो अनादि से है, वैसा ही है, वो तो उसी के लिए इसको शुद्ध कहा है, उसमें कभी अशुद्धता आती ही नहीं। पारिणामिक भाव में कभी अशुद्धता आती ही नहीं है, इसलिए उसको शुद्ध भाव कहा है। और वो अनादि से अनंत काल तक एक रूप, एक रूप का अर्थ जैसा है वैसा, और हर समय है रूप रहता है। तो सिद्ध होने पर उसका नाश नहीं होता। हाँ, उस वही मैं हूं, क्योंकि हमें मैंपना स्थापित करना है ना, तो एक एक समय में नष्ट होने वाला वो मैं हूं क्या, कायम रहने वाला मैं हूं? तो कायम रहने वाले के साथ यथा योग्य पर्याय होगी, परंतु हमें उसको अभी गौण करना है। और कायम रहने वाला ऐसा जो स्वभाव भाव है, उस रूप मैं हूं ऐसा स्वीकार करना है, फिर चिंता नहीं करने की मेरी पर्यायों का क्या होगा। क्यों पर्यायों की चिंता करनी कि नहीं करनी? चिंता करनी, ये तो अपने आप यथा योग्य हो जाती है। पारिणामिक भाव का आश्रय लेते हैं तो ये यथा योग्य हो जाती है। देखो हम कल घूमने गए थे, अभी यहाँ की बात नहीं इंडिया की बात है, तो एक किसान कुछ ऐसे झुककर कर रहा था, बहुत सुबह से देखा हमने, दोपहर होने का आई तो झुककर उसी वही कुछ ऐसा ऐसा कर रहा था, खींचातानी कर रहा था। भाई तू क्या कर रहा है? तो कहता ये जो मेरी छाव यहाँ टेढ़ी है ना, उसको मैं सीधा कर रहा हूँ। वो बैठकर झुककर कुछ कर रहा था, तो कहता है मेरी ये परछाया जो है शैडो, उसको मैं सीधा कर रहा हूँ। तो ठीक है ना, वो कब कर पाएगा? हाँ, वो जब सीधा होगा। उसको क्या करना है, स्वयं सीधा हो जाए तो वो परछाया भी अपने आप सीधी होने जाए। वैसे हमारे भगवान हमको बताते हैं, अरे तू स्वयं भगवान स्वरूप है, उसका आश्रय ले ना तो पर्याय स्वयं भगवान स्वरूप हो जाएगी। ये कारण शुद्ध पर्याय है, यहाँ परमात्म भाव है, पारिणामिक भाव है, उसका आश्रय तू है, वो उसका स्वीकार करो तो पर्याय में वो प्रकट होगा अपने आप। वो हम क्या करना चाहते, पर्याय की ओर जाके खींचातानी कुछ करना चाहते, तो ये उसका मार्ग नहीं है, क्योंकि हमारा लक्ष्य कहाँ है, पर्याय की ओर। हमें राग को हटाना है, कहाँ देखे राग की ओर, देखे कहाँ देखे? तो हमको राग ना हटाना है, ना राग को ना जुटाना है। वही तो, क्योंकि राग जो है एक समय की पर्याय है, और एक समय की पर्याय जो ऑलरेडी उत्पन्न हुई है उसको हटाना के जय रखना, वो खुद एक समय में नष्ट हो जाने वाली, और जो अभी आई नहीं उसको हटाना के नष्ट करना, जो आई नहीं उसको क्या करना। हाँ, तो अभी जो पारिणामिक भाव में एकाग्र हो जाते हैं तो नई आने वाली जो पर्याय है वो तो अनंत आनंदी रहित होकर उत्पन्न हो जाएगी। तो कहने में आता है कि आत्मा को ग्रहण करो और राग को छोड़ो। हम कहाँ जानने में रुक गए हैं, राग को। अभी हम कहेंगे हमें तो बच्चों का राग तो छोड़ दिया, अरे पण ये विकल्प हो जा रहे ना, आत्मा ऐसा है वैसा है वैसा है, रात दिन चल रहा है, आत्मा का अनुभव करना है ना, ये विकल्प है और ये विकल्प है वो रागात्मक होते हैं। जब तक आत्मा कैसा है समझना था तब तक तो ये विकल्प कार्यकारी थे। अभी आत्मा के ध्यान करना है, आत्मा का अनुभव करना है तो भी क्या मानता है, अरे मैं रागदेव जी कैसा विकल्प करूं, कैसा विकल्प करूं, कैसे विकल्प करूं तो आत्मा का अनुभव हुआ। ऐसे सेंटर पड़ा है और ऐसे बाहर ऐसे गोल 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 घूम रहा है, कब सेंटर पर पहुंचेगा? तो इसको भी राग कहा है, वो विकल्प को भी राग कहा है। उसकी बात आएगी, देखो हम थोड़े दो लाइन आगे पढ़ते हैं। देखो ये जो पारिणामिक भाव का ज्ञान कराकर, पहले में पहले उपाय क्या है, पारिणामिक भाव का ज्ञान करना है। अभी तक हम जानते ही नहीं थे, अभी हमने आगम में से आचार्यों के द्वारा इसको जान लिया। तो ज्ञान कराकर अपने गुण पर्याय रूप भेदों को, पहले में पहले आत्मा कैसा है, द्रव्य किसे कहते हैं, तो कहेंगे गुण पर्याय व द्रव्यम, उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तम सत सद्रव्य लक्षणम। तो हम ये गुण क्या है, पर्याय क्या है, द्रव्य क्या होता है, कैसा परिणमता है, कौन उसकी पर्याय बदलता है, दूसरा कौन हमको हेल्प करेगा, ये सारी बातें जानकर, यानी बिल्कुल द्रव्य को विस्तार से जानना जरूरी है। तो ये जानकर गुण पर्याय रूप भेदों को, ये जो भेद है ना हमने पाड़े द्रव्य में, क्यों? क्योंकि हमको द्रव्य कैसा है समझने की आवश्यकता थी। तो हमने गुणों के, पर्यायों के, प्रदेशों के भेद जान जानकर, उसके भेद कर करके जाना, जीव असंख्यात प्रदेशी है जाना, अनंत गुणों का पिंड है जाना, और फिर पर्याय उसकी एक के बाद एक, एक समय में एक एक पर्याय होती है अनादि से अनंत काल तक, ये भी जाना। तो हमने द्रव्य को भेद करके जाना। अब कहते हैं ये जो भेद करके जाना है, इन भेदों को और परवस्तुओं को गौण करके, गौण करना था तो जाना क्यों? क्योंकि हमें सच्चा स्वरूप जानना था, इसलिए पहले भेद करके जानना। भेद करके जानना भी अत्यंत आवश्यक है और जानने के बाद भेदों को गौण करना भी आवश्यक है। भारत क्या है ये जानने के लिए वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और यहां पूर्व से पश्चिम तक वो कितने स्टेट्स है, कहां कौन सा स्टेट है, ये सब हमने जाना। महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, वो कल नीचे वो सर राजस्थान, सबको जाना, आंध्र, कर्नाटक, विस्तार से जाना, भेद करके जाना। अभी भारत को एक जानना है तो क्या करना, ये टुकड़े टुकड़े ध्यान में रखना कि नहीं रखना? जाने हुए को अभी भेद को गौण करना है। सब है अंदर, क्या इनके बिना भारत होगा ना? हाँ, जैसे समय सार में आता है, आत्मा ज्ञान नहीं दर्शन नहीं चारित्र नहीं, अरे इन बिना का है, ये गाथा में कह दिया। तो हम कहेंगे भारत क्या है, भारत महाराष्ट्र नहीं है, भारत राजस्थान नहीं है, भारत गुजरात नहीं है, भारत एमपी नहीं है, भारत कर्नाटक नहीं है, भारत आंध्र नहीं है, तो इनके बिना भी भारत है क्या? हाँ, इनके भेद के बिना वाला है, ये है, परंतु एक अकेला महाराष्ट्र वो भारत नहीं है, इन सब का अभेद भारत है। पहले हमने भारत क्या है समझने के लिए भेद करके समझा, ये हरेक जो प्रांत है उसका आकार भी देखा, सब कुछ देखा, उसकी भाषा देखी, वहां के लोगों के पहराव सब कुछ देखा। अब भारत एक अखंड है जब जानना है, एक अभेद भारत है, तो भेदों को गौण करना है। ये सब कहीं चले नहीं जाएंगे, महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र सभी उसी में रहेंगे, परंतु अभी हम पूरे अखंड भारत को ध्यान में ले रहे, ख्याल में ले रहे, वैसे अभी क्या करना है, गुण पर्याय रूप भेद पहले जाने, परवस्तुओं को भी जाना। क्या परवस्तु जाने? यहां कर्म भी है, जहां मैं रहता हूं यहां शरीर भी है, उसको भी जाना, बाहरी परवस्तुओं को भी जाना। अब क्या करना है, सबको गौण करना है। जिसको गौण करना है उसको पहले जानेंगे, हो जाने बिना गौण किसको करेंगे? क्योंकि ऐसे मानने वाले ने पर्याय है ही नहीं है। ऐसे भी कोई एकांतवादी है कि जो कहते हैं क्या, आत्मा शुद्ध बुद्ध है, ज्ञाता दृष्टा है, बस, तो मैं हूं ब्रह्म सत और बाकी सारा जगत मिथ्या, ऐसी बात नहीं है। जो मैं हूं तो मैं परम पारिणामिक भाव को भी जानेंगे, पर्यायों को भी जानेंगे, गुणों को भी जानेंगे, परद्रव्य को भी जानेंगे। जानकर अभी उनको गौण करना है। आचार्य देव उन पर से लक्ष्य छुड़वाते, उनका लक्ष्य छोड़ना है, पहले जानना है और फिर उसका लक्ष्य छोड़ना है, और फिर आगे क्या बात बनती है वो दोपहर को देखेंगे। बोलो 2400 भगवान की जय।